संतुष्टः सततम् योगी
संतुष्टः सततम् योगी
संतुष्टः सततम् योगी
संतुष्टः सततम् योगी
यत आत्मा दृढनिश्चया यत आत्मा दृढनिश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मयि अर्पित
मनो बुद्धि
यो मद भक्त समे प्रिय
यो मद भक्त समे प्रिय।
आज मैं कुछ आखिरी बात सुनाना चाहता हूँ, बहुत ऊंची बात सुनाना चाहता हूँ। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सम्मे प्रिय। योगी सतत संतुष्ट रहता है, लेकिन भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता। चाहे उसको सारी दुनिया का राज दे दो, चाहे स्वर्ग का राज दे दो, तो भी भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सम्मे प्रिय। भगवान हमको प्यारे हो जाएं, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन इससे ज्यादा सौभाग्य है कि हम भगवान को प्यारे हो जाएं। ईश्वर की भक्ति हम करें ये अच्छी बात है, ईश्वर को प्रेम हम करें ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ऊंची बात है कि ईश्वर को हम प्यारे हो जाएं, ईश्वर हमको प्यार करे। हम ईश्वर का भजन करें ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी भी घड़ियां आती है कि ईश्वर हमारा भजन करे। और ईश्वर अपना भजन करे, समझ लो अपना भजन फल गया। हम भजन करते हैं, स्वीकार हुआ या ना हुआ कोई पता नहीं, लेकिन जब वो भजन करता हमें याद करता है ना, तो हम स्वीकार हो गए तभी तो याद करता है। और वो हमें याद करे, उसको हम प्यारे हो जाएं, उसकी तरकीब भी उसने बता दी। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। वो मुझे प्यारा है। और जो अंतर्यामी भगवान को कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो सबके दिल में आकर्षित कर रहा है सबको, प्राणी मात्र सुख से आकर्षित है। कीड़ी भी सुख चाहती है, पंछी भी सुख चाहते हैं, गौ भी सुख चाहती है, मनुष्य भी सुख चाहते हैं। और जो सुख से आकर्षित है, जो आनंद से आकर्षित है, कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, वो कृष्ण है। बताओ फिर इस्लाम में कृष्ण है कि नहीं, जैन में कृष्ण है कि नहीं, बौद्ध में कृष्ण है कि नहीं, यहूदियों में कृष्ण है कि नहीं, त्यागी में कृष्ण है कि नहीं, रागी में कृष्ण है कि नहीं। सब लोग आकर्षित हो रहे हैं आनंद से, सब आनंद चाहते हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे अला हो, चाहे बला हो, चाहे डाकिनी हो, चाहे साकिनी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन सब आनंद के लिए सुबह से लेकर शाम तक और जीवन से लेकर मौत तक सब प्राणी आनंद के लिए भाग दौड़ करते हैं। आप लोग इधर आए तो आनंद के लिए, हम लोग दाढ़ी बना के बाबा जी हुए तो आनंद के लिए, और तुम दाढ़ी मुंडा के बेटा जी हुए तो आनंद के लिए, और कोई बफ गुलाब बना के छोरा जी हुआ तो आनंद के लिए, और कोई दो दो चुटला बना के बेटी जी हुई है तो आनंद के लिए, और कोई मुंडम मुंडा के साधवी हुई है तो आनंद के लिए, और कोई बाल बढ़ा के वैसी हो गई तो आनंद के लिए। प्राणी मात्र आनंद के लिए चेष्टा करता और दूसरा कुछ नहीं करता। बोले बाबा जी ये तो पैसा के लिए जाता है, पैसा के लिए नहीं जाता है। पैसा लाएगा तो क्या चाहेगा, पैसा देकर वस्तु लाएगा, और वस्तु का उपयोग करके सुख चाहेगा, और कुछ नहीं चाहता। पैसा नहीं चाहता, सुख चाहता है। जय जय। पैसा आ गया, ये पैसों वाले बैठे हैं बड़े बड़े, पूछो पैसा से सुख होता तो बाबा जी के पीछे पीछे आते। जयराम जी की कह दो। देख लिया पैसा नहीं था तो समझा कि पैसा आएगा तो सुखी होऊंगा, पैसा आ गया मकान बन गया, गाड़ियां बन गई, ये हो गया, लेकिन वो सुख कोई और चीज है। चलो असली सुख नकली सुख में कुछ नहीं, असली सुख के लिए बाबा जी के पास सुख के लिए आते, दुख कोई नहीं चाहता। तो सच पूछा जाए तो दुनिया में कोई नास्तिक हो नहीं सकता। जय जय। हाँ, किसी संप्रदाय को कोई माने, कोई देवी को, देवता को, भगवान को माने चाहे न माने, लेकिन सुख को तो सब चाहते हैं। तो भगवान का असली स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। वो सत है और चैतन्य, और उसी का आनंद आता है। लेकिन उसको ठीक से नहीं जानते तो ठीक से आनंद नहीं टिकता, और बेठीक रास्तों से आनंद लेना चाहते हैं, उसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। जय जय। हम उसे ठीक से नहीं जानते हैं, उसलिए ठीक आनंद नहीं टिकता। बेठीक रास्तों से हम आनंद चाहते हैं, उसीलिए आनंद टिकता नहीं, दुख टिक जाता है। जैसे दादर की खुजली होती है ना, दाद होता है ना, दाद, दादर बोलते ना, उसको खुजलाने से जरा मजा आता है, लेकिन वो खुजलाने का मजा ठीक रास्ता नहीं, घाव बढ़ जाएगा। ऐसे ही जो कुछ हम बाहर का सुख लेने की कोशिश करते हैं, ये समझो अंदर अपने खुजलाहट पैदा करते, फिर दिल में दुख और परेशानी बच जाती। इसलिए भगवान रास्ता बता रहे हैं कि संतुष्ट सततम योगी, यत आत्मा, जो यत्न करने वाला है, यत्नशील जो है, ठीक ढंग पर यत्न करता है, वो सतत संतुष्ट रहता है। और जो भी ठीक पर यत्न करता है वो परेशान हो जाता है। जो इलाज किया त्यों दर्द बढ़ता गया, जो सुख के लिए कोशिश की, नौकरी की, लुगाई लाए, छोरे लाए, परिवार हुआ, लेकिन पूछो क्या हाल है। जवान स्कूल में जाता है, क्यों जाता है बेटे के, महाराज आशीर्वाद दे दो ना, मैं पास हो जाऊं। अच्छा जी, हो जाएगा, थोड़ा भगवान का स्मरण करना, हो गया। फिर बाबा जी अब मैट्रिक पास हो गए, कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मिल गई कॉलेज का, बाबा जी ये आखिरी साल है, पास हो जाऊं, चलो गंगा माई की कृपा से पास हो गए, फिर तो बस में ये बाबा जी फिर कुछ नहीं मांगूंगा, बस पास हो जाऊं ना, छुट्टी हो जाए, आराम हो जाएगा। पास हो गया, फिर पूछो क्या हाल है, बोले नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। नौकरी मिली, फिर क्या हाल है, कि छोकरी मिल जाए तो अच्छा है। छोकरी मिल गई, फिर क्या हाल है, कि बाबा जी ठीक है, लेकिन 5 साल हो गए, गोद खाली रे बकरे अंदाता, एक पाव माटी मिली जाए तो, अरे तो 4 पाव माटी ले जा। जिनके पास 4 पाव माटी, उनसे पूछो क्या हाल है, कि बाबा जी छोरा तो 4 है लेकिन केड़ो नहीं करे। अब केणो करे तो, कि केणो तो करे, पर वहां सगाई नहीं वैभव करे। सगाई हो गई, 4 छोरारी, 4 वो आई। फिर पूछो क्या हाल है, कि छोरा तो है पर 2 को तो संतान हुआ और 2 को नहीं हुआ बाप जी, वो देहा कर, हो गया। अब क्या हाल है, कि बाप जी बूढ़ा हो गया हूं, आंखें बढ़ाता नहीं है, अब घर में कचकच होती है, और बाप जी रात को नींद नहीं आती, बाप जी संसार में कोई सार नहीं। और एक काका, अभी तेरे को पता चला संसार में सार नहीं, वो तो आखिर इतना सब हो, अब क्या हाल है, कि बाप जी आशीर्वाद करो, मैं तो कि मरे जाऊं तो सुखी हूं। तो मरता भी है सुख के लिए मरना चाहता ना, आज तक बोलता था कि पढ़ लूं तो सुखी हो जाऊंगा, पास हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, नौकरी करूं तो सुखी हो जाऊंगा, छोकरी लाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, फिर बच्चे बनाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, दादा बन जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। अब देखो क्या हाल है, कि बोले बाप जी संसार में कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है बाप जी, कोई किसी का नहीं बाप जी, मर जाऊं तो बस आशीर्वाद दो। क्यों मरना चाहते, कि दुख है, दुख है तो आप सुख चाहते ना, मौत भी सुख के लिए चाहते हैं, बच्चा भी सुख के लिए चाहते हैं, नौकरी भी सुख के लिए चाहते हैं, और भैया और बदली किसके लिए चाहते हैं, सुख के लिए। प्राणी मात्र की गहराई में सुख की मांग है, इस बात का कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और जो सुख है 2 प्रकार का है, एक संसार की चीजें के लिए भटक भटक के, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, चबाते चबाते उसकी मैड़ों से खून निकलता है, समझता है इसमें मजा आ रहा है, ऐसे ही आदमी अपने आप को परेशान करके क्रियाओं से, और फिर 10-5 दिन में जो शक्ति बनती है उसका जब नाश करता है, काम विकार में सुख आया, सुख क्या आया, अब बर्बादी हुई। अपने मेढुओं का खून निकलता है तो हड्डी में स्वाद आता है, ऐसे अपने जीवन की शक्ति का हरास आता है तभी बोलते सुख आया। सुख नहीं हुआ। आप कोई पिक्चर देखते हैं, कोई अच्छा, जिसको अच्छा मानते, क्रिकेट देखते, तो क्या होता है, रात भर आप सोते हैं तो आपकी शक्ति संचय होती है, और दिन को देखते क्या है तो आपके वेव्स खर्च होते हैं, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती, खर्च होती है, तभी आपको मजा आता है। रात को नींद न करो और दूसरे दिन क्रिकेट देखो तो मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि आपकी जो सुख की अपनी शक्ति है, मेहरों का जो खून है वो नहीं है, तो हड्डी चमाने में सुख कहां है। तो ऐसे ही कान से द्वारा सुनने का सुख, आंख के द्वारा देखने का सुख, और महाराज विकारों का सुख, ये सारा का सारा सुख जो है, तुम्हारी शक्ति नाश होती है तभी अपने को सुख की भ्रांति होती है, सच्चा सुख वो नहीं। भगवान बताते हैं जिसने सच्चा सुख ले लिया वो मुझे बहुत प्यारा है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सम्मे प्रिय, वो मुझे बहुत प्यारा है। नर्मदा के किनारे भरूच नाम सुना होगा तुमने। नर्मदा के किनारे एक विशाल वट वृक्ष था। वृक्ष के नीचे एक मुल्ला रहता था। उन लोगों को झाड़ता था, बुहारता था, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी निकालता था, ऐसा उसका धंधा था। वो झोपड़े में हर बारिश में झोपड़ा टपके, और कहीं रसोड़े में टपके, चूल्हे में टपके, कहीं बिस्तर पर टपके, लेकिन वो झोपड़ा टपकता रहता। मोलवन बोलती जरा सुधार के आओ, मुल्ला ऊपर चढ़ता, झोपड़ा को ठीक ठाक करता, लेकिन उतरते समय वो चटाइयों में या ऐसे उन ऊपर जो सामान कचरा पटे था, कहीं उसका पैर लग जाता, खड्डा पड़ जाता, फिर टपकन चालू। एक जगह ठीक करता तो दो जगह बिगड़ जाता, दो जगह ठीक करता तो एक जगह बिगड़ जाती। हर चौमासे में झोपड़ा कहीं न कहीं से टपकता ही रहता। पिछले 9 साल से यह हालत थी कि हर चौमासे में 4-4 बार वो ऊपर चढ़े, लेकिन बेचारा कुछ न कुछ उतरते समय कहीं न कहीं हाथ जम जाए, कहीं पैर जम जाए, खड्डा हो जाए और पानी टपकता रहे। मोलवन ने सोची कि 9 साल हो गए, ये झोपड़ा बना नहीं सकते, बरसात में रसोई कैसे बनाए और बिस्तर भीग जाते, ये अपना जरा सा झोपड़ा ठीक नहीं कर सकता है तो धंधा कैसे करता, कमाता कैसे होगा, कैसे लाता है लोगों के पास। ये सोच रही थी, इतने में एक आया बुलावा कि मुल्ला जी चलो हमारे भाई को जरा भूत लगाए। मुल्ला जी अपना झोली झंडा में जो कुछ अटरम सटरम था वो डाल के और चले। मोलवन को हुआ कि मैं देखूं ये कैसे कमाते। मोलवन धीरे धीरे दबे हुए पैर गई। मुल्ला जी ने अपना निकाला जादुई लकड़ियां और कुछ, और लड़का को खटिया से बांध के सुला दिया था। मुल्ला ने एक फेरा मारा और लड़का के कान में कहा, फू आकाश बांधू पाताल बांधू, आकाश को बांध दूंगा पाताल को बांधूंगा, जल बांधू थल बांधू, तेज बांधू पृथ्वी बांधू, भूत बांधू प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू साकिनी बांधू। कान में जोर से फूंक मारी, फूं। फिर दूसरा चक्कर मारा, फिर कहता कि आकाश बांधू पाताल बांधू जल बांधू। जब जल बांधू कहता है तो मूलवन की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई कि जल को बांधने की बात कर रहा है, मेरा झोपड़े की हाल क्या मैं जानती हूं। मूलवन ने अपने आप को खूब रोका और छुप कर ये सारा तमाशा देखती जा रही। दूसरा चक्कर लगाया और कान में ऐसा ही कहा। तीसरा चक्कर लगाया और कहा आकाश बांधू पाताल बांधू जल बांधू। जो जल का नाम आया, मूलवन अपना बस बैलेंस खो रही थी, कैसे भी करके अपने को संभाला। अब चक्कर तो 7 लगाने थे, तीसरे चक्कर में आउट ऑफ लिमिट हो रही थी। महाराज चौथा चक्कर मार के जब मुल्ला ने कहा कि आकाश बांधू पाताल बांधू जल बांधू, तो वो कपड़ा धोने की सोटी होती है ना, सोटी पड़ी थी उठाकर पीठ पर 2 मार दी। जरा सा झोपड़ा 9 साल से टपकता है, उसकी 2 बूंद पानी नहीं बांध सके तो क्या जल बांधू थल बांधू करते हो। आप लोग तालियां तो बड़े प्रेम से बजाते, मुझे मजा भी आता है, लेकिन मुझे कहना होगा वो मुल्ला दूर नहीं है, हमारा पड़ोसी है, तुम लोगों का पड़ोसी है। तो तुम्हारे पास में ही रहता है, हर घर में रहता है, हर घर के पड़ोस में रहता है। वो मुल्ला हमारा मन है, ए कर दूंगा वो कर दूंगा, ए बांधूंगा वो छोड़ूंगा, लेकिन जरा सा अपने आप को भी तो यार परमात्मा में डुबकी लगा के तो देख, जरा सा अपने दिल को तो बांध के देख, जरा सा अपने वृत्तियों को तो बांध के देख, फिर दुनिया तेरे चरणों में बंधी रह जाएगी। ये जरा सी जरा सा हृदय है अंगुष्ठ मात्र, इधर जरा ठीक कर लो सारी दुनिया तुम्हारी हो गई, इधर ठीक नहीं किया तो सारी दुनिया को बांध दिया, तभी भी भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भगवान तुमको वो झोपड़ा बांधने की अटकल दे रहे हैं, वो हृदय की जरा सी थोड़ी सी है, थोड़ा सा बहुत थोड़ा काम है, वो अगर ठीक कर लिया तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन तुम जिस वस्तु को छुओगे वो वस्तु प्रसाद बन जाएगी, तुम जो बोलोगे वो मंत्र बन जाएगा, तुम जिस जल को निहारोगे वो गंगा जल हो जाएगा, तुम जिस जमीन पर पैर रखोगे वो तीर्थ बन जाएगी, तुम जिस व्यक्तियों के तरफ निहारोगे उनके पाप कट जाएंगे, तुम ऐसे पवित्र हो जाओगे। एक बार केवल जरा सी डुबकी मार दो, तुम इतने महान हो सकते, इतने पवित्र हो सकते हो। हम उस परमात्मा के सुख में, उस सतत संतुष्ट रहने वाले सुख से हम डरते हैं, उधर नहीं जाते, आकाश बांधू पाताल बांधू भागते हैं, लेकिन जो जरा सी झोपड़ी दिल की है उसको अगर बांध ले तो बेड़ा पार हो जाता है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। तो मई अर्पित मनोबुद्धि कैसे करें, जरा बुद्धि को देखो। हम लोगों में बड़ी ये गलती आ जाती है कि हम समझते हैं कि हम पापी हैं, हम समझते हैं हम संसारी हैं, हम समझते कि हमारा कोई नहीं है, ये हम गलती करते हैं। अगर आदमी पापी होता तो अपने को पापी नहीं मानता, जब पाप करता है तब नहीं मानता मैं पापी हूं, जब पाप से थोड़ा दूर जाता है अंदर आता है तब सोचता है कि मैं पापी हूं। तुम काजल आंख में लगा दो तो आंख का लगा हुआ काजल आंख में है तो नहीं दिखेगा, आंख से जब दूर लगाओगे तब दिखेगा। ऐसे ही तुम्हारे में अब अगर पाप होते ना तो तुमको नहीं लगता मैं पापी हूं, पाप तुम्हारे से थोड़े अलग हुए हैं तभी तुम देख रहे हो कि मैं पापी हूं। नहीं, पाप तुम्हारे से अलग हो रहे हैं उस समय भगवान को धन्यवाद दो कि पाप दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं तो मुझ में नहीं है, मेरे शरीर में थे, मेरे मन में थे, मेरे बुद्धि में थे, वो मेरा मन और बुद्धि हे भगवान तेरे ध्यान में डुबा देता हूं। ऐसा दुनिया का कौन सा पाप है, ऐसा दुनिया का कौन सा बड़े में बड़ा भारी पाप भी हो, लेकिन तेरे आगे पापों की क्या ताकत है हे ईश्वर। पाप है मन में, पाप है विचारों में, पाप है बुद्धि में, मन और बुद्धि में पाप रहते हैं, वो जैसे भी हैं मेरा मन और बुद्धि तुझे अर्पित कर देता हूं। जब ईश्वर में मन बुद्धि अर्पित कर दिया तो महाराज पाप की क्या ताकत है रह सके, ताप की क्या ताकत है रह सके। हमें पाप तपा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। मन और बुद्धि को सत्ता देने वाला हम है, हमारे को सत्ता देने वाला मन बुद्धि नहीं है। मन और बुद्धि में पाप है या शरीर में पाप है, जो हो गया हो गया, लेकिन अब जैसे भी है तैसे है, पापी है, क्रोधी है, कामी है, लोभी है, दुराचारी है, कंगाल है, दुष्ट है, जैसे भी है वो मन और बुद्धि है, वो तुझे हम अर्पित कर देते, हम तेरे हो गए और ये भी तेरे हो गए, अब तू जान तेरा काम जाने। एक खूनखार आदमी आया, बड़ा खूनखार, उसकी आंखें भी कुछ बोल रही थी, कुछ चलम बलम भी लेके आया था, चर्च का गोटा आ गया कि बाबा जी मैंने आपकी कथा सुनी, आज तक तो मैं डालों के और पत्तों के चक्कर में था, लेकिन अब पता चला कि भगवान तो अनादिकाल से है, मूल अनादिकाल से है, मोहम्मद आए उसके बाद इस्लाम चला, लेकिन मोहम्मद के पहले भी भगवान तो था, बुद्ध आए बुद्धिज्म चला उसके पहले तो भगवान था, महावीर आए और जैन पंथ चला उसके पहले भी तो भगवान था, कृष्ण आए उसके पहले भी कोई सत्य तत्व था सनातन। बाबा जी अब मुझे मूल का पता चल रहा है, आज दिन तक मैं भगवान भगवान को नहीं मानता था, मैं बड़ा खतरनाक खूनखार आदमी हूं बाबा जी, लेकिन आपका सत्संग सुन के होता है कि मैं अब आपके आश्रम में रहूं, आपका शिष्य बन जाऊं। बाबा ने कहा ठीक है, स्वीकार है। बोले बाबा जी मेरे में इल्लत है, बोले स्वीकार है। बाबा जी मैं शराबी हूं, बोले कोई बात नहीं स्वीकार है। बाबा जी मैं गंजेड़ी हूं भंगेड़ी हूं, बोले स्वीकार है। बाबा जी मैं चोर हूं, बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मैं डाकू भी हूं, बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मेरे में दुनिया भर की इल्लतें हैं, बोले बेटा कोई बात नहीं। वो देखने रह गया कि बाबा जी दुनिया भर का खतरनाक खूनखार आदमी मेरी आंखें देख लो, बोले कोई बात नहीं। बोले बाबा जी आप मेरे जैसे आदमी को कैसे स्वीकार कर रहे हो। बाबा ने कहा तू कैसा भी है, लेकिन जब वो परमात्मा अपनी दुनिया से तुझे नहीं निकालता तो मैं अपनी दिल से तुझे क्यों निकालूं बेटा, तू मुझे स्वीकार है और मैं तुझे चमका सकता हूं। अपि चेत् दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन व्रजिनम संतरिषसि। गीताकार कहते हैं और किसी से पूछो तो बोले 12 साल व्रत रखो, 13 साल ये करो, 15 साल पूछड़ा करो और 25 साल ढींगणा करो। लेकिन कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तू पापी हो, पापी में भी महापापी हो और पापियों का तू दुराचारियों का शिरोमणि भी हो, लेकिन ज्ञान की नाव में बैठ जा, उसी समय मैं तुझे पार कर दूंगा, ऐसा ज्ञान का खजाना है। ज्ञान मिड़ई ज्ञानड़ी, ईंट चूने का ज्ञान, लोहे लक्कड़ का ज्ञान, दवाई का ज्ञान, सुत्ती फोकी का ज्ञान, खेती करने का ज्ञान, ये सब पेट भरने के ज्ञान है, ये सब ज्ञानड़ी है। कितनी चढ़े चोटी, दाल और रोटी, कुंभार और सोटी, दाल और रोटी, और क्या करेगा। कितना भी बड़ा हो जाएगा तो वो दिखाएगा और क्या करेगा, हीरे तो नहीं जमाएगा। तो ये सब ज्ञान जो है ज्ञानड़ी है। ज्ञान मिड़ई ज्ञानड़ी, ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोफ का 1600 मैदान। ये ब्रह्म ज्ञान सुनने से इतना पुण्य होता है कि हजारों लाखों रुपया खर्च करके जो लोग यात्रा करते हैं, यात्रा से इतना पुण्य नहीं होता जितना ज्ञान का श्रवण करने से पुण्य होता है। ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे। एक तरफ कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की स्थापना करने आता हूं, ऐसा कहते हैं। और आगे चलकर अर्जुन को कहते हैं सर्व धर्मान परित्यजे, सब धर्मों को छोड़ दे। जो कृष्ण कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने को आता हूं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं धर्म की संस्थापना करने आता हूं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने को आता हूं और धर्म की स्थापना करने को आता हूं। वही भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सर्व धर्मान परित्यजे। अब ये दोनों वचन भगवान के हैं तो जरा ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए तो मैं आता हूं, ऐसा भी श्री कृष्ण कहते हैं, और अर्जुन को कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दे। इसका मतलब है कि जब साधारण जीवन में हम लोग जीते हैं तो धर्म नियमों का अवलंबन लेते हैं और हम सदाचार शिष्टाचार से एक दूसरे के हितेशी हों, ये जरूरी है। ये हमारा सामाजिक धर्म, व्यक्तिगत धर्म, सामाजिक धर्म, मानवता का धर्म, ये तो ठीक है। लेकिन जब कोई सत्यकृत करना है, मोह माया में आदमी फंस जाता है, दुराग्रह में फंस जाता है और मैं फलाना हूं, मैं ढींगणा हूं, ऐसा करके अपनी आत्मशक्ति से वो नीचे आ जाता है, तो फलाना हूं ढींगणा हूं की जो मान्यता का जो धर्म है वो छोड़कर उस आत्मा के शरण आ जाओ तो तुम फटा फटर जाते हो। इसका ये अर्थ महापुरुष लोग बताते हैं, योगी लोग बताते हैं, तपस्वी लोग बताते हैं, जिन्होंने साक्षात्कार किया ऐसे महापुरुषों हजारों का ये अनुभव। तो वचन तो ग्रंथ के हैं लेकिन समझने के लिए हमें अपनी पवित्र बुद्धि का आधार लेना पड़ता है। तो पवित्र बुद्धि कैसे होती है, एक सम्मेलन में कश्मीर के विद्वान आए थे, कोई काशी के विद्वान आए थे, कोई कहीं के विद्वान आए थे, बड़ा भारी महापुरुषों का सम्मेलन था। तो कुछ तो ऐसे अनुभवी संत भी थे और कुछ तथाकथित भी थे। माइक तो सबको मिल जाता है, तथाकथित साधु ने कहा अगर दिल पवित्र नहीं है तो भगवान का नाम लेने से क्या फायदा, अगर मन में पाप है तो राम राम करने से क्या फायदा, अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं तो राम राम करने से क्या फायदा, अगर हमारा जीवन अच्छा नहीं है तो राम राम करने से क्या फायदा, भगवान भगवान करने से क्या फायदा। वो अपना जैसा आया उसको वो मूंग पीसता गया। जब बेजवाबदार लेक्चर करके बैठ गया तब एक सच्चे ईमानदार जवाबदार संत के चरणों में लोगों ने प्रार्थना की कि बाबा जी अब उपदेश देंगे। बाबा जी ने कहा कि भैया अभी अभी इन्होंने कहा कि मन पवित्र नहीं हो तो भगवान का नाम लेने से क्या फायदा, मन पवित्र नहीं है तो राम राम करने से क्या फायदा। मैं इनको पूछता हूँ, मन मैला है तो उसको धोने के लिए तुम बताओ कौन सी साबु की जरूरत रहेगी, कौन सा सोडा खार ले आए, अथवा कौन से धोबी के दुकान पे अपवित्र मन की पवित्रता होगी, ये मुझे जरा बता दे। मन अगर पवित्र नहीं है तो राम राम करने से क्या फायदा, तो राम मन पवित्र किस धोबी की दुकान पे होगा ये तो बता दो। अगर अपवित्र है तभी तो राम राम कर रहे हैं, अपवित्र को ही तो पवित्र करना है। जब पवित्र है तो राम राम क्या कहेंगे, राम तत्व में ही लीन हो जाएंगे, राम कहते ही समाधि लग जाएगी, राम कहते ही राम रस में खो जाएंगे। तो मन अपवित्र है तो भगवान का नाम लेने से क्या फायदा, मन अपवित्र है तो मंदिर में जाने से क्या फायदा। अरे भैया तो बताओ, मन अपवित्र है तो कौन सी लॉन्ड्री में इसको पवित्र किया जाए, कौन से धोबी घाट में ले जाए। तो इन बातों को समझना होगा। राम कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे शिव कहो चाहे और किसी देवी देवता का भगवान का नाम ले लो, लेकिन ईश्वर का नाम लेते लेते वैखरी में से जीव मध्यमा में आता है, मध्यमा से पशंति में आता है, और पशंति में आते आते जब परा में जाता है ना, तो इस जीवात्मा और परमात्मा की ऐक्य का उसे रस मिलता है। वो ऐसा रस होता है कि फिर वो भीतर से सतत संतुष्ट रहता है। बाहर से सुख भी आ जाए तो उसको अंदर का इतना सुख मिलता कि बाहर के सुख में वो लोलुप नहीं होता है, उपयोग कर लेगा लेकिन उसे आसक्ति नहीं होगी। बाहर का दुख आता है लेकिन अंदर इतना सुख आ रहा है आत्मा का कि बाहर का दुख उस पर प्रभाव नहीं डालता है। तो सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है, वो जानता कि मेरा आत्मा एक रस है, वो एक रस आत्मा के सुख में इतना तृप्त है कि कृष्ण के वचन यहां सार्थक हो जाते हैं, संतुष्ट सततम योगी। जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया है, जीसस के मन में आता है कि मेरे मालिक मेरे खुदा हे मेरे ईश्वर, मैंने लोगों के लिए क्या क्या किया और लोग बदले में क्या देते हैं। एक क्षण के लिए दुख आ रहा है लेकिन अंदर का सुख फिर प्रकट हुआ, अरे लोग मुझे क्या करेंगे, क्रॉस पे तो इसे चढ़ाते हैं जो एक दिन चढ़ने वाला है मरने वाला है, मैं तो अमर हूं, हे मालिक तेरी मर्जी पूर्ण हो। एक मिनट पहले तो जीसस मरियम के पुत्र जीसस थे लेकिन दूसरी मिनट में वो परमात्मा के पुत्र जीसस हो गए और पूजे जाते। सुकरात को जहर दिया जा रहा था, मित्रों ने कहा कि गुरु ये क्या कर रहे हो, हमको तो डर लग रहा और तुम जहर मांग रहे हो। बोले जीवन जी के भी देख लिया और इसकी मौत भी देख लूंगा, जिसने जी के देखा है वही मर के देखता है, मैं जीने और मरने दोनों से पृथक हूं, मौत के समय भी वो संतुष्ट है। मंसूर को शूली लगी है और मौत के समय संतुष्ट है। मीरा का अपमान होता है और अपमान के समय संतुष्ट है। श्री कृष्ण का कितना अपमान होता है, ऐसा नहीं कि कृष्ण आए और मक्खन मिश्री मिलने लगा, ऐसी बात नहीं है। आए और छठे दिन तो पूतना आई जहर भरकर, देन का असुर बका असुर अघासुर जैसे आए, मामा के साथ दुश्मनी युद्ध, फिर भी जब देखो तो श्री कृष्ण की बंसी बज रही, जब देखो तो मुस्कुरा रहे, जब देखो तो मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। तो आज का श्लोक है संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित। मई अर्पित माना मुझ में, आत्मा में जो मन बुद्धि को अर्पित करता है। रात्रि को अनजाने में हमारी नेत्र इंद्रियां, कान इंद्रियां, धारणा इंद्रियां, त्वचा इंद्रिय सब इंद्रियां संकुचित होकर मन में लीन होती है, मन बुद्धि में लीन होता है, और बुद्धि अनजाने में अविद्या के पर्दे के बीच आकर आत्मा में लीन होती है। हमारा मन और बुद्धि आत्मा में लीन होता है अनजाने में, तो हमारे शरीर की थकान मिटती है, हमारे इंद्रियों की थकान मिटती है, लेकिन हम समझकर ध्यान के द्वारा आत्मा में लीन हो जाएं तो हमारे जन्म जन्म की थकान मिटती है और हमारा तो उद्धार होता है, हमारे कुल का भी उद्धार होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं संतुष्ट सततम योगी, यत आत्मा दृढ़ निश्चया भोगी, सतत संतुष्ट नहीं रह सकता। ऐसा कोई भोग नहीं है कि भोग के समय उसके लिए प्रयत्न न करना पड़े, भोगते समय शक्ति क्षीण न हो और अंत में भोग नाश न हो, ऐसा कोई दुनिया में भोग नहीं है। इसीलिए भारत का विशाल राज्य जिनका था भरतरी, वो लिखते हैं, भोगान भुक्तम वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा इच्छाएं तो नाश नहीं हुई संसार के सुखों की, लेकिन सुख लेने की ताकत नाश हो गई। भोग तो पूरे नहीं हुए लेकिन हमारा जीवन पूरा हो गया। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम न होंगे, लोग हमें शमशान में पहुंचा कर आएंगे, उसके पहले लोग हमें शमशान में छोड़ाएं, उसके पहले हम अपने मन को जरा परमात्मा में छोड़ाएं तो कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर होगा, कितनी मंगलकारी जिंदगी शुरू हो जाएगी। वैदिक काल की बात है, एक सम्राट घूमने गया, रात्रि हो गई, पूनम की रात रही होगी, लौटते समय दूसरे रास्ते से आया, एक झोपड़ी दिखी, देखा कि इस जंगल में कौन बेचारा रहता है। झोपड़ी में जरा झांका कि एक टाट का टुकड़ा, उस पर कोई बैठा है और ज्ञान मुद्रा में परमात्मा के ध्यान में मस्त लगता है, कोई भिखारी है कोई साधु है। सम्राट ने आवाज लगाया, साधु बाहर आए, बोले क्या है? बोले आप इस झोपड़ी में रहते हैं? साधु ने थोड़ा इशारा किया, हाँ। नीचे आए, घोड़े से उतरे, देखा कि कनिष्ठर में जरा से मूंग पड़े, जो रजाई है उसको कई चिथरे लगे हैं, टाट का टुकड़ा है, बर्तन टूटा फूटा है और झोपड़ा ऐसा कि दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, चंद्रमा के किरणों टिमटिम आते हैं, दिया बत्ती नहीं है, तेल भी नहीं, केरोसिन भी नहीं। राजा को दया आई, बोले मेरे नगर में ऐसा आदमी दुखी दरिद्र ठीक नहीं है, लो मैं ये तुम्हें कुछ दे देता हूँ, बाद में आप आ जाना, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। उस साधु ने कहा कि जा किसी दरिद्र को दे देना। बोले तुमसे बढ़कर दरिद्र कौन मिलेगा? खाने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं, तुमसे बड़ा दरिद्र कौन मिलेगा? ले लो, मालूम होता है बहुत दिन का दुख भोगा है, उसीलिए आप अपमान करते हैं, थोड़ी सी रकम का हम दूसरी भी भिजवा देंगे। बोले दूसरी अपने पास रखो, ये भी तुम ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। राजा ने कहा महाराज तुम नाराज नहीं होना, हम कल और भेज देंगे। बोले मैं ना बोलता हूँ, नाराज क्या, किसी दरिद्र को देना। राजा ने कहा फिर तुमसे बढ़कर दरिद्र कौन मिलेगा? तब वो बाबा जी आ गए अपने सतत संतुष्ट के स्वभाव में, बोले मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं तो सोना बनाना जानता हूं, सोना मुझे तो नहीं जानता, मैं सोना बनाना जानता हूं। जन देखा कि बाबा लोगों का तो भला कहो भाई, छुपे वेश में क्या पता कौन हो, देखता ही रह गया। बोले देखते क्या हो, मैं सोना बनाना जानता हूं। बाबा की वाणी में कोई सच्चाई थी, कोई गहराई थी। राजा को एक गहरी चोट लग गई कि हाँ वास्तव में हो सकता है। राजा सुकड़ गए, झुक गए, बोले महाराज तो फिर दास हाजिर हो जाए, दास को सिखाओ। बोले बेटा सुबह 4 बजे आना नहा धो के। जी महाराज। रात भर नींद नहीं आई उस युवराज को। सुबह आया, बाबा जी ध्यान में हैं, बाहर खड़ा रहा अदब से। बाबा जी ने ध्यान खोला, बोला आ गया कि हाँ। बोले अब ऐसा कर, तूने मेरे को कहा मैं दरिद्र हूं, अब मैं दरिद्र हूं कि तू दरिद्र? तू मांगने आया मेरे से, मैं देऊंगा तब तू लेगा सोना बनाना। तूने मेरे को कहा तुम दरिद्र हो, अब बता तुम दरिद्र कि मैं दरिद्र? राजा और राजकारणी लोग किस समय कहां झुकना और कहां अकड़ना वो तो जानते, तभी तो बेचारे राज कर सकेंगे। बोले यहां झुकने का मौका है। बोले महाराज हुकुम, दास दरिद्र है। बोले तू 7 बार कह मैं दरिद्र और तुम सम्राट, मैं दरिद्र तुम सम्राट। बोले बाबा मन में सोचा 7 बार क्या, 17 बार भी कहने से अगर सोना बनाना सीख लिया तो अपना लोहा तो राज्य में बहुत है, दे सोना करके आसपास के सब राज्य खरीद लेकर उनको अपना बना के सम्राट बन जाऊंगा। इतना राज्य होते हुए भी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए 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 में पृथ्वी का राज्य एक आदमी को मिल जाए तभी भी वो संतुष्ट नहीं रह सकता जब तक आत्मा का रस उसे नहीं आया। गीताकार ने बहुत सुंदर बात कही है, संतुष्ट सततम योगी, ऐसा नहीं कहा संतुष्ट सततम धनवान, संतुष्ट सततम रूपवान, संतुष्ट सततम आदमी, संतुष्ट सततम माइया, संतुष्टम सततम साधु, संतुष्टम सततम गृहस्थी, ऐसा नहीं कहा। लेकिन जिसने आत्म परमात्मा का योग कर लिया वो सतत संतुष्ट रहता है, जो आत्मा के रस से विमुख है उसका सतत संतोष सतत आनंद नहीं रह सकता है। राजा ने कहा महाराज मैं दरिद्र, आप बोले देख सोना बनाना सीखना है तो आज्ञा का पालन करना होगा। बोले महाराज कहो, कान पकड़, उठ बैठ कर, मैं दरिद्र तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। बोले बाबा जी तो सीधी बात है, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक। 10-15 दंड बैठक लगा दी, युवा तो था ही। महाराज जो कान पकड़ के दंड बैठक लगाई, सुबह का समय था, बाबा जी ध्यान करते थे, वो वाइब्रेशन थे, श्वासोश्वास चला, प्राण अपान की गति टकराई, थोड़ा सा सुषुम्ना का द्वार खुला रहा होगा अथवा तो प्राणायाम का प्रभाव और वाइब्रेशनों का प्रभाव से उसकी थोड़ी सी चित्त वृत्ति सात्विक हुई। बोले बेटा अच्छा थोड़ी देर बैठ जा, मैं जरा सोचता हूँ। ध्यान व्यान लगाकर, सोचना तो क्या था, ध्यान लगाकर उसकी कल्याण की जरा सी भावना कर दी। दिन उग गया, बोले आज तो नहीं होगा, थोड़े दिन आता जा, जब मेरे को मौज आएगी ना तब मैं सिखा दूंगा। युवराज गया, कथा कहती, दूसरे दिन आया, बाबा ने थुसरा दूसरे ढंग का कुछ बिठाया, कुछ प्राणायाम कराया, तीसरे दिन बिठाया प्राणायाम कराया, जो जो बिठाया प्राणायाम और ध्यान कराया त्यों त्यों उसकी रजस और तमस वृत्तियां शांत होती गई और सत्वक वृत्तियां उठती गई, उसे अंदर का रस आने लगा। शुरू में तो प्रलोभन से राजा ने उन राजा को बुलाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस युवराज भाग्यशाली को आए बिना चैन नहीं पड़ता था, और आए बिना चैन नहीं पड़ता था तब राजा को देखा कि अब पात्र है, ध्यान में बिठाया और थोड़ी संप्रेक्षण शक्ति का और धक्का मार दिया और महाराज उसकी समाधि लग गई। कुछ घंटों के बाद उठाया, बोले बोल बेटा कितना सोना बनाना है। बोले महाराज जो राज्य है वो भी तो छोड़ के मरूंगा, अब सोना बनाऊं फिर दूसरे राज्य को अपना बनाऊं फिर भी तो मर जाना है, अब मेरे को तो अंदर का रस बढ़िया आ रहा है महाराज, अंदर का और समाधि लग जाए और ध्यान लग जाए। बोले बेटा अब बता, तू पहले राजा था कि अभी राजा है। बोले महाराज पहले तो दरिद्रता को छुपाने के लिए बाहर से राजा था, लेकिन अभी पता चला कि अभी मैं दिल का राजा हो गया हूं, अब मुझे अंदर से संतोष मिल रहा है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। जितने अंश में हमारी आंतरिक यात्रा होती है उतना उतना हमारा आंतरिक राज्य बढ़ता है।